السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آج ہم ان شاء اللہ تعالی سورہ مومن کی تفسیر دیکھیں گے. سورہ مومن جس کو کہ سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے، یہ مکی سورت ہے، اور اس کو جب آپ برے صغیر کے مصحف میں دیکھیں گے انڈیا پاکستان کے تو سورہ مومن لکھا ہوا، لیکن جب آپ عرب کے نسخوں میں دیکھیں گے تو سورہ غافر لکھا ہوا. اب اس کے یہ دونوں ہی نام ہیں، اس لیے کہ ایک سورہ مومن اس کا نام اس لیے کیونکہ اس میں ایک رجل مومن کا ذکر آتا ہے، اور سورہ غافر اس لیے کیونکہ آیت نمبر 3 میں غافر الذنب آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ لکھا ہوا. یہ حامیم کے سلسلے کی پہلی سورت ہے. اس کے بعد 6 سورتیں اور آئیں گی جو حامیم سے ہی سٹارٹ ہوتی ہیں، یعنی یہ کل 7 سورتیں ہیں جو حامیم سے سٹارٹ ہوتی ہیں، جو کہ مکہ میں نازل ہوئی. یہ تمام کی تمام یعنی مکی سورتیں. اس کی فضیلت کے بارے میں، بلکہ ان تمام ہی جو حوامیم ہیں ان کی فضیلت ابن کثیر میں بیان کی گئی ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا دروازہ ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا دروازہ یہ حامیم کی صورتیں ہیں، یہ حوامیم جن کو کہہ سکتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور ابن قدام کہتے ہیں کہ ان صورتوں کو عرائس کہا جاتا ہے. عرائس عروسہ کی جمع، یعنی دلہن، عروس دلہن کو کہتے ہیں نا، تو عرائس یعنی یہ سارے دلہن ہی ہیں. ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں تلاوت کرتا ہوں حامیم والی صورتوں پہ جب پہنچتا ہوں تو مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے گویا میں ہرے بھرے پھلے پھولے باغوں کی سیر کر رہا ہوں. یعنی آپ بھی محسوس کریے گا کہ ان صورتوں میں آپ کو کیا ملتا ہے، کیونکہ یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن میں کوئی احکامات نہیں ہیں، بلکہ ان میں آپ دیکھیں گے کسی اور طرح سے آپ کو بیان کیا گیا، بڑا حسن و جمال ہے. احکامات کے بغیر آپ کو صرف وعظ و نصیحت اور آخرت کی یاد، اس طرح کی چیزیں ان میں آپ کو ملیں گی. اسی طرح ابن مسعود کہتے ہیں کہ حامیم صورتیں جو ہیں وہ دیباج القرآن ہیں، یعنی قرآن کا ریشمی حصہ ہے، اور وجہ پھر وہی اگین کہ ان میں کوئی احکامات نہیں آپ کو ملیں گے. اور ان کو مغز بھی کہا گیا قرآن کا، ابن عباس سے مغز قرآن کا، یعنی اس سے آپ ان صورتوں کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پر رات کو حملہ ہو جائے تو تمہارا شعار حامیم لا ینصرون ہونا چاہیے، یعنی حامیم لا ینصرون پڑھا کرو. حامیم اور اس کے بعد اب حامیم، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ صورتوں کے ان صورتوں کے تمام کے شروع میں حامیم آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم لا ینصرون پڑھنے کو کا تلقین کی بھی ہے، یعنی نہیں دشمن مدد کیے جائیں گے، وہ دشمن غالب نہیں آ سکتے، وہ مدد نہیں کیے جائیں گے، اللہ کی طرف سے ان کی مدد نہیں ہوں گی. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بتائے ہیں تو پھر ہمیں ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. تو جب بھی دشمن کا کوئی خوف ہو، یا جب بھی آپ کو یہ ہو کہ کہیں سے वो दुश्मन मغلوب कर लेगा हमें, तो फिर ये पढ़ा करें, ये बात ज्यादा से ज्यादा आजकल फैलाएं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये पढ़ें तो बहुत अच्छा है। इसी तरह और भी जगहों पे जहां पे भी किसी को भी खतरा हो किसी से कि कोई नुकसान पहुंचाएगा, वहां पे भी हामीम ला युनसरून तीन सिर्फ अल्फाज हैं, लेकिन इंसान को हिफाजत देते हैं ये। तो देखते हैं अब इस सूरत का पहला हिस्सा आयत नंबर 1 से 20 तक आयतें, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत अहकामात वाली नहीं है मगर पावरफुल आयात है। ये सूरत हामीम जो है, आपको जैसे मैंने इसकी कुछ फजाइल बताए हैं उस लिहाज से देखें तो जब इंसान इन सूरतों को पढ़ता है तो वाकई उसका दिल नरम हो जाता है, वाकई में आखरत की याद आती है और इंसान अल्लाह की तरफ मायल होता है। तो देखते हैं इस सूरत को तफसीर सूरह मोमिन या सूरह गाफिर। मक्की सूरत 9 रकूआत और मक्की सूरतों का जैसे कि मौजू एक ही होता है, कुफर और ईमान की कश्मकश, तो पूरी सूरत में आप इसको देखेंगे। इसका आज हम आयत नंबर 1 से 20 तक करते हैं। एक ज़ईफ़ हदीस के मुताबिक ये जो पहली इसकी 3 आयतें हैं इनको कोई आयतल कुर्सी के साथ मिला के पढ़ लेता है तो उसकी शाम तक हिफाजत की जाती है, मगर ये ज़ईफ़ हदीस है इसलिए इसका अगर चाहे तो अमल कर भी लें तो फजाइल में से एक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम, जैसे कि आपको मालूम है कि हरूफ मुकत्तआत का माना अल्लाह ताला ही जानता है, मगर मैंने आपको वो रिवायत बयान की है कि हामीम ला युनसरून ये पढ़ा जाए जब दुश्मन का खतरा हो, किसी किस्म के भी दुश्मन का, जिससे कोई आपका मुखालिफ है, कोई आपका आपसे कोई बैर रखता है, कोई किसी से आपको नुकसान का अंदेशा है, तो सिर्फ ये 3 अल्फाज पढ़े। अब इसके अंदर हामीम का तर्जुमा हम नहीं जानते, हम नहीं जानते कि हामीम का क्या मतलब है, तो कुछ मतलब तो होगा इसीलिए इसको साथ मिलाया गया। तंजीलुल किताब, नाजिल करना है किताब का। तंजील जो लफ्ज है ना, एक तो नाजिल करना होता है कि तंजील वो जिसमें तदरीज हो आहिस्ता आहिस्ता। देखिए कुरान करीम का एक नजूल तो वो है ना जिसको इन्ना अनजलना हु फी लैलतुल कदर कहा गया ना, अनजलना अनजलना एक दफा नाजिल करना, लैलतुल कदर में का कहां से, लौहे महफूज से आसमानी दुनिया तक, और दूसरा इसका नजूल क्या है, तंजील यानी अब आसमानी दुनिया से जमीन तक, लेकिन वो क्या एक दफा में आया है या आहिस्ता आहिस्ता 23 साल में आता रहा, आहिस्ता आहिस्ता आया ना, तो तदरीज है उसके अंदर, इसीलिए तंजील का लफ्ज आया। ठीक है, तो ये फर्क है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसका इंजाल भी हुआ और तंजील भी हुई है, तंजील उल किताब, किताब की तंजील। किताब इसको क्यों कहा गया, इसलिए क्योंकि किताब लिखी हुई चीज को कहते हैं और ये लिखी हुई है हमारे सामने सहीफों में, और फरिश्तों के पास भी जो सहीफे हैं उनमें भी ये लिखी हुई है और लोहे महफूज पे भी ये लिखी हुई है। तो ये सबसे पहले तो लोहे महफूज पे लिखी गई ना, और उसके बाद ही फिर आगे जमीन पे भी लिखी गई है इन सहीफों की सूरत में। मीन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से है, ये बताना इसलिए जरूरी है कि कोई ये ना समझे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद अपनी तरफ से बना ली है, शायद इनको किसी और ने सिखा दी है या पता नहीं कहाँ से ले आए हैं, नहीं अल्लाह की तरफ से है ये जहन में रखो। तो काफरों का ये कहना था कि पता नहीं किसने इनको सिखा दिया, आज भी अगर किसी के जहन में ऐसी कोई बात आती है, कोई ऐसा शुबा, कोई ऐसा शक आता है कि हो सकता है पता नहीं किसकी तरफ से हो ये, तो उसमें इंसान को ये सोचना चाहिए कि ये मीन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से है, ये कुरान कहता है। इसी वजह से आप इस किताब को देखेंगे कि इसके अंदर कभी कोई फ्लॉ नहीं निकाल सका, कभी कोई ऐसी बात नहीं निकाल सका कि यहाँ पे इसमें ये गलती है। इसका चैलेंज है, और आपको पता है हरूफ मुकत्ता चैलेंज के लिए भी होते हैं कि अगर ऐसा कलाम तुम ला सकते हो तो ऐसा कलाम ला के दिखाओ, और इंसान को आजिज कर दिया गया कि वो ऐसा कलाम नहीं पेश कर सकता। और मैंने आपको पहले भी बताया था हरूफ मुकत्ता आज के बाद अक्सर किताब का जिक्र आता है, कुरान का जिक्र आता है, और इसकी वजह यही होती है कि इस जैसा कलाम किसी को लाने की ताकत नहीं, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से और अल्लाह ताला के कलाम का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इंसानी कलाम अल्लाह ताला के कलाम को कैसे पहुंच सकते हैं, इंसानी जहन कैसे पहुंच सकता है, तो पहुंच ही नहीं सकता। लिहाजा ये उसकी तरफ से जो अल अजीज है, अल अजीज का माना क्या, यानी गलबे वाला, कुव्वत वाला, जो इख्तियार रखने वाला, इसलिए हम इसका माना जबरदस्त भी करते हैं। तो ये मोजा जो कुरान की सूरत में हमारे सामने है, ये अल अजीज की तरफ से है, उसकी तरफ से जो बड़ा कुव्वत और गलबे वाला है, ये पकड़ने पे भी कादिर है, और अलीम की तरफ से भी है जो इल्म वाला है, जिसका इल्म कामिल है, और कोई दुनिया में ये दावा नहीं कर सकता कि वो अल अलीम है, ये उसको हर तरह का इल्म है। आप देख लें जिनके पास कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां भी हो, कितनी बड़ी, आप दुनिया में देखें लोगों को कितने कितने वो दावे करते हैं अपने इल्म के कि हम बहुत फिलोसोफर हैं, हम बड़े पीएचडी हैं, हम फलां हैं। किसी के पास 2 PhD होंगे, डॉक्टरेट की डिग्रियां होंगी, किसी के पास 3 होंगी, मगर क्या हर इल्म का कोई अहाता कर सकता है? अगर कोई होगा तो वो एक इल्म में कोई थोड़ी बहुत महारत रखता है, वो भी अकले कुल नहीं है एक इल्म में। मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर है, वो अगर दांत का डॉक्टर है तो उसके अलावा जितने आजा हैं उनके बारे में नहीं उसको कुछ पता, और वो भी उस फील्ड में अकले कुल नहीं है। अगर वो टॉप का भी डॉक्टर है, दिल का डॉक्टर है, तो तब भी आप क्यों सेकेंड ओपिनियन के लिए जाते हैं? इसलिए कि आपको पता है कि एक का इल्म कामिल नहीं है, आप जानते हैं, आप तीसरे के पास जाते हैं, आप औरों से भी मशवरा करते हैं, फिर भी उनको गलती लग जाती है। इसका मतलब है किसी का इल्म कामिल नहीं इस दुनिया में। और फिर वो एक दिल का डॉक्टर है, बाकी आजा का क्या हाल है, और फिर बाकी उलूम का क्या हाल है, और भी तो कितने सारे उलूम है। वो सिर्फ एक चीज का अपने आप को स्पेशलिस्ट कहेगा, उसमें भी वो स्पेशलिस्ट नहीं है, उसमें भी वो टॉप पे नहीं है, और बाकी उलूम के मामले में तो बिल्कुल ही कोरा। अब अगर हम दीन की बात करें, चाहे कोई दीन का इल्म रखने वाला भी हो, मगर वो भी कोई ऑलराउंडर तो नहीं है। सारा इल्म एक तो उसने ले लिया हो, हर चीज का उसको इल्म हो, और दूसरा ये कि वो बाकी भी तमाम उलूम को जानता हो, तो ये नहीं। एक अल्लाह की जात अल अलीम है। यहाँ पे क्यों ये बात बताई गई, इसलिए कि बात किताब की हो रही है, याद रखना ये किताब उसकी तरफ से जो अल अलीम है। तो फिर इस किताब में कैसे आप शक कर सकते हो? ये ऐसे नहीं कि किसी एक स्पेशलिस्ट की तरफ से, उसको तो अपना फील्ड ही बस थोड़ा बहुत आता, नहीं, जो हर चीज का इल्म रखता है। वला युहीतून बिशै मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, वो तो किसी को इल्म देता भी है तो वो जिसको चाहे जितना इल्म दे, इल्म के खजाने भी उसके पास हैं। हमने पहले पढ़ा है कि सब खजानों की चाबियां उसके पास, पूरी दुनिया का इल्म मिला के भी कितना है, इतना सा जितना के परिंदे की चोंच में एक पानी का कतरा। यही फरमाया था ना खिजर अलैहि सलाम ने मूसा अलैहि सलाम से, जब कश्ती के ऊपर एक परिंदा आके बैठा था, इतना सा इल्म है। और हमारी हालत ये हो जाती है कि इतने थोड़े से इल्म, इतना सा इल्म भी एक बंदे का नहीं है,
सबका मिला के है, तब भी हमारी ये हालत है कि हम जरा सा भी कुछ पढ़ लेते हैं तो हम फूले नहीं समाते, और इतना तकब्बुर आ जाता है कि मुझे तो बहुत पता है, मैं बहुत जानती हूँ। कैसे जानते हैं, जो समझता है ना कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, मैं बड़ा इल्म वाला हूं, वो उतना ही जाहिल। इसलिए हम बड़े बड़े उलमा को देखते हैं, उनमें इतनी आजी होती है, वो कहते हैं हम तो तालिबे इल्म है, हम कहाँ आलिम है, क्योंकि इल्म तो ऐसा समंदर है, आप इसमें से सब कुछ पा ही नहीं सकते। तो एक अल्लाह की जात अल अलीम है। अब आप उसके बाद जब ये किताब खोलते हैं और ये सोच के कि मिन अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से है, वो जो रब है कायनात का, वो जो अल अजीज है, कुव्वत उसके पास, गलबा उसके पास, पावर उसके पास, सारी कुल पावर उसके पास है, चाहे तो किसी को पकड़ ले, नहीं मानते तो किसी को भी वो सजा दे दे, वो इस पे कादिर है और अलीम है। फिर उसके बाद कहना ये आयतें तो ऐसे क्यों हैं और ये तो ऐसे इसमें क्यों लिखा है और ये तो अहकाम नहीं होने चाहिए थे, क्या हम नहीं ईमान रखते कि वो हाजिर गायब का और वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब का जानने वाला है, क्या ये हमारा ईमान नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर क्या वो नहीं जानता था नऊजुबिल्ला कि जो है 21वीं सदी में क्या होना है, क्या वो नहीं जानता था कि इनको किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा? तो वो अलीम है, याद रखें, उसके फिर अहकामात को क्वेश्चन करना कि ये क्यों ऐसे है, ये हमारी कहां से ये जुर्रत हो गई, हम अलीम के इल्म को क्वेश्चन कर रहे हैं, सोचे तो सही, क्योंकि ये मीन अल्लाह है। इसलिए अपनी जुबानों को खोलने से पहले 100 दफा सोचें कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूं, वो जो अल अलीम है उसकी बात में शक कर रही हूं या उसकी बात उसके साथ इख्तलाफ कर रही हूं कि ये सही नहीं, जो मैं समझती हूँ वो सही है। वो चाहे कोई भी मामला हो, किसी किस्म का भी हो, अपनी अकल को जब तक नीचे नहीं करेंगे तब तक इस किताब से आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। अपनी अकल को झुका दें उस अल अलीम के आगे, ये अकल कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इल्म हमारे का तो हाल ये है कि हमें तो अपने घर के बच्चों का भी नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, हमें दूसरे कमरे में नहीं पता कि कोई हमारे बारे में कोई बात कर रहा है या क्या कर रहा है, हम नहीं जानते। हमारे इल्म के तो ये सता है, इसी से सोच लिया करें, फिर भी हम इंसानों के इल्म को ज्यादा तरजीह देते हैं, और फलां फिलासफर ने ये बात की, फलां साइंटिस्ट ने ये बात कर दी, और उनसे इतने मुतासिर रहते हैं, और उस अल अलीम का ये इल्म है जो इस किताब में है, और इससे हमें कुछ कोई सरोकार नहीं और बड़ी चीज नहीं समझते। तो गाफिरिज़्ज़म्ब, आप देखें अल्लाह ताला ने अपनी सिफात का यहाँ पर जिक्र किया, अगली आयत में 6 सिफात का जिक्र फरमाया। पहले तो अल अजीज और अल अलीम था, उनको मिला के 8 हो गई, इस आयत में अकेली में 6 सिफात हैं। गाफिरिज़्ज़म्ब, काबिल तौब, शदीद अल इक़ाब, ज़िद तौल, ला इलाहा इल्ला हू, इलैहिल मसीर। सबसे पहले गाफिर ज़म्ब, गुनाहों को बख्शने वाला। ज़म्ब तो वाहिद है, लेकिन जब वाहिद का कलिमा मारफा की तरफ मुजाफ होना, गुनाहों की बख्शिश फरमाने वाला मुजाफ हुआ है किस तरफ, मारफा की तरफ, तो अमूम का माना देता है, यानी हर किस्म के गुनाह, छोटे बड़े, छुपके किए हुए, लोगों के सामने किए हुए, ज्यादा या कम, जितने भी हैं, गाफिरिज़्ज़म्ब वो बख्शिश फरमाने वाला है गुनाहों की, बशर्ते के बंदा सच्चे दिल से तौबा कर ले। तौबा सच्ची क्या होती है, कि इंसान में निदामत हो, गुनाह पे इतराए नहीं, गुनाह पे फखर नहीं करे, ये खुश ना हो कि मैं ना पिछले जमाने में इतने गुनाह करती थी, कि मैं तो ऐसे घूमती थी, मैं तो ये करती थी, मैंने तो फलां जगह पे फलां किया, और उस वक्त जवानी थी, बस उसका नशा था, और बड़े फखर से अपने ये कारनामे बता रहे हैं। मैं तो यहां यहां घूमा करती थी, ऐसे ऐसे जाया करती थी, ये शर्मिंदगी नहीं है। शर्मिंदगी ये होती है कि इंसान अपने गुनाहों को बड़ा समझते हुए और उनसे तौबा करे, अपने गुनाहों को बड़ा समझते हुए उनसे पलट आए, अपने गुनाहों को मामूली ना समझे, ये ना कहे मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया, मेरा ऐसा क्या कसूर हो गया, लोग तो इतने बड़े बड़े करते, इसका मतलब आप अंदर कोई शर्मिंदगी नहीं। दूसरे को जब लुक डाउन करना के देखो ये तो कुछ भी नहीं करती, और देखो मैं तो क्लासेस भी लेती हूँ, पढ़ती भी हूँ, तहज्जुदे भी पढ़े, ये तो कुछ ये 5 नमाजों में से 4 भी नहीं पढ़ते, मुझे देखो जरा। अब ये अंदर ही अंदर उसके चल रहा है, बोल रहा नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर चल रहा है, तब वो किस चीज पे माफी मांगे। हाँ चलो अल्लाह ताला माफ कर दे बस मुझे, कहीं कभी मेरे से कोई गलती हो गई हो, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं मेरे से गलतियां हुई हैं, नहीं मेरे से गुनाह हुए हैं, नहीं मुझसे नाफरमानियां हुई हैं, अगर ये जज्बा नहीं है तो तौबा किस बात की है फिर। अल्लाह ताला उसके लिए जो पलट आता है उसकी तरफ, कि यानी एक इंसान है ना जिसको, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि एक इंसान है जिसे वाकई गलतियों का उसको एहसास हो गया, उसके दिल में निदामत है, क्योंकि उसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, बहुत सारे गुनाह हुए। अब क्या है, हमने पहले भी पढ़ा था कि अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना, ये पढ़ा था ना कि बहुत सारे गुनाह भी इंसान के हैं ना, जुनूब वहां पे आया और जमिया आया, सारे के सारे को अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। इंसान एक पॉइंट पे ऐसे भी आ जाता है जब उसके गुनाह उसको इतना सताने लगते हैं और इतनी शर्मिंदगी होने लगती है, और अल्लाह ताला की अजमत का एहसास भी दिल में होता है, और फिर इंसान दुनिया को देखता है ना तो हर तरफ से उसको धुतकारा जा रहा है, मतलब माँ बाप भी कह देते हैं चला जा यहाँ से, हमें अपनी शक्ल ना दिखा, तूने हमें किसी जगह पे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, खानदान वाले भी डिसोन कर देते हैं, दोस्त अहबाब भी मिलना नहीं चाहते, अब कोई फोन ही नहीं उठा रहा, किधर जाए हर तरफ से धुतकारा, हर कोई कह रहा है तू बुरा तू बुरा तू बुरा। ऐसा इंसान सोचे उसके पास सुभान अल्लाह एक दर ऐसा है कि जो फिर भी खुला रहता है, चाहे सारी दुनिया कह दे ना कि आप बुरे हैं, आप ऐसे वैसे इतने गलत हैं, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, हमारा आपसे रिश्ता खत्म, टूट गया रिश्ता, एक रिश्ता कभी नहीं टूटता, और एक जात ऐसी है जो कभी नहीं कहती कि मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म, आपसे मेरा तुम्हारा ताल्लुक नहीं है, माँ बाप भी कह देते हैं मगर वो जात नहीं कहते, वो अल्लाह की जात है। जब इंसान देखता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए, लोग मुझसे अब दूर भागते हैं, ताल्लुक नहीं रखना चाहते, सब नहीं धुतकार दिया, तब इंसान को असल में ये एहसास होता है और गाफिर जंब का पता चलता है कि अल्लाह तू तो कैसा बख्शिश फरमाने वाला। वो इंसान जो इतनी गिल्ट में आ जाए और जो धुतकार दिया जाए, वो असल में समझता है इस चीज को कि अल्लाह तू सिर्फ गाफिर जंब है, कि ये नहीं कभी कहता कि अब इतने गुनाह लेकर आ गए हो मेरे पास, या अब तुम्हें याद आया, या अब जब सब ने तुम्हें धुतकार दिया तो अब मेरे मेरा ही दरवाजा रह गया खटखटाने को, पहले तो तुम्हें याद नहीं आई मेरी, या इतने बड़े बड़े तुमने गुनाह किए तुम्हें ख्याल ना आया, या इतना भर लिया तुमने अपना अमालनामा तुम्हें जरा सी सोच ना आई, या तुमने तो हर तरह के गुनाह किए हैं, कैसे इनको बख्शा जाए।